हमने निश्चित किया होता है, जो जो कर्म की भोगना जिस रूप में हमने निश्चित किया होता है, इसलिए कहा जाता है कि डेस्टिनी आपने फाइनल की है, किसी और ने फाइनल नहीं किया है, हमने फाइनल किया है। व्हाट इज डेस्टिन फॉर अस। फिर उसके बाद उनको पूछा गया उसके बाद क्या हुआ, तब उन्होंने बताया कि 2 साल तक हमें बहुत अच्छी तरह याद रहता है कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए, किस किस के साथ हमारा हिसाब सेटल करने के लिए आए हैं। 2 साल तक जब तक हमारी वाचा नहीं खुलती है तब तक हमें बहुत अच्छी तरह से स्मृति रहती है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। लेकिन जैसे ही वाचा खुलने लगती है और मोह माया के बंधन में हम आ जाते हैं, अटैचमेंट में आने लगते हैं कि हमारी जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से हम आए हैं वो भूलने लगता है, और जैसे ही वो भूल जाते हैं, और इसीलिए जब जीवन में दुख आता है तो हम दूसरों को ब्लेम करते, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, इसका नो, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि दैट वॉज फाइनलाइज बाई मी। लेकिन न सिर्फ दूसरे को ब्लेम करते हैं, लेकिन इतने नेगेटिव और फालतू विचार जनरेट करते हैं, उस कारण हम और हिसाब को मजबूत करते हैं। इसीलिए कहते हैं ये कर्म की गति अति गुह्य है, डीप सीक्रेट्स। ये लेटेस्ट रिसर्च उनका है। वो बहन जो डॉक्टर है, उन्होंने जब यहां पर हम लोगों को सुनाया था, उसकी कैसेट आपको मिलेगी, उनकी आवाज में अगर सुनना है कि क्या रिसर्च किया है मृत्यु के बाद क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा रेवल्यूशन उन्होंने स्पष्ट किया कि मृत्यु के बाद कैसे हम आने वाले जन्म को भी फाइनलाइज करते हैं, जो जो भोगना से हमें गुजरना है उसको भी फाइनलाइज करते हैं, खुद ही खुद को सजा देते हैं और लाइफ स्पैन भी फिक्स करते हैं, इतना समय मुझे चाहिए, 14 साल या 25 साल या 50 साल, ये हिसाब को चुकतू करने के लिए ये लाइफ स्पैन भी हम ही फाइनलाइज करते, शरीर कैसे छोड़ेंगे उसको भी हम ही फाइनलाइज करते हैं। इसीलिए कहते हैं डेस्टिनी को कोई चेंज नहीं कर सकता है। ये हुई हमारे जन्म की और कर्म की एक गुह्य गति। लेकिन अब कितने जन्म लेते हैं इस संसार में, 5000 साल का ये चक्र हमने देखा सुबह में, 5000 साल में सिर्फ 84 जन्म है, मैक्सिमम 84 जन्म, मिनिमम 1 जन्म, हर एक का अपना अपना हिसाब है। इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ती गई, क्योंकि बाकी जो आत्माएं ऊपर थी वो नीचे आती गई अपने अपने समय अनुसार। जितना देरी से आते हैं उतने कम जन्म होते हैं, जितना जल्दी आते हैं उतना जन्म भी मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम 84 बर्थ्स, मिनिमम 1 बर्थ, और ये मैक्सिमम 84 बर्थ्स भी हम कैसे लेते हैं, ये चारों युगों की जो कहानी है उसको सीढ़ी के रूप में दर्शाया गया है। आज अगर हम देखें कि मनुष्य की एवरेज लाइफ स्पेन क्या होती है, आज के युग में एवरेज लाइफ स्पेन क्या होती है, एवरेज कितनी, 60 एवरेज आप कहते हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, एवरेज लाइफ स्पेन कितनी होती है, 60 लाइफ स्पेन होती है। अच्छा, अगर हम पूछे कि हमारे पूर्वजों की लाइफ स्पेन कितनी थी, ज्यादा जीते थे कम जीते थे, ज्यादा जीते थे, 80 होगा, 70-80 तक होगा उनकी लाइफ स्पेन, नहीं वो तो बहुत आगे की बात है, कि हमारे माता पिता या हमारे बाप दादा कितना जीते थे, 80 तक जीते थे। अच्छा, उनके माता पिता कितना जीते थे, उनके पूर्वज कितना जीते थे? 100 तक जीते थे। उनसे आगे जो त्रेता युग में लोग थे, देवी देवताएं, उनकी लाइफ स्पैन कितनी होगी? ज्यादा होगी, 125 साल तक होगी। उनसे जो आगे सतयुग में देवी देवताएं थे, उनकी लाइफ स्पैन कितनी होगी? 150 तक होगी? होगी नहीं होंगी? होनी चाहिए, है ना। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इतनी मेडिकल एडवांसमेंट के बाद भी लाइफ स्पैन कम क्यों हो गई, क्या कहेंगे आप? इतनी मेडिकल एडवांसमेंट होने के बाद भी लाइफ स्पैन कम क्यों हो गए? पहले के जमाने में इतने मेडिकल फैसिलिटीज न होते हुए उनकी लाइफ स्पैन ज्यादा क्यों थी, क्या कहेंगे आप? अच्छा, घी दूध का खाना खाते थे ऐसा नहीं? हाँ, उनकी वैल्यू सिस्टम, उनकी वैल्यू सिस्टम अच्छी थी, बहुत स्ट्रांग थी। आज की दुनिया में लाइफ स्पैन कम क्यों हो गए? क्योंकि जो विकृतियां मनुष्य जीवन में आ गई है, इसलिए कहा जाता है कर्म का बहुत गहरा हिसाब हमारे जन्मों के साथ है। जैसा कर्म वैसा जन्म और वैसी लाइफ स्पैन होती है। और इसलिए आज के युग के अंदर अकाले मृत्यु बहुत हो गई है। एक बच्चा 10 साल का होते मर जाता है, दूसरे जन्म में शायद बैलेंस कर लेता होगा 90 साल तक जी लेता है, है ना। एक जन्म में कम हो गया तो दूसरे जन्म के थोड़ी लंबी लाइफ स्पैन होगी, लेकिन कर्म में, कर्म का बहुत गहरा कनेक्शन है जन्म के साथ। अच्छा, अब ये 84 जन्म का हिसाब जो ईश्वर ने बताया है हमें, वो हम आपको सुनाते हैं। बहुत गहरी बातें हैं समझने की, लॉजिकली आप सोचेंगे तो शायद आपका विवेक उस बात को स्वीकार करेगा कि सतयुग में जो देवी देवताएं थे, पवित्र आत्मा ऊपर से नीचे उतरी, सत्यता का युग है, और उस सत्यता के युग के अंदर जब वो नीचे जन्म लेते हैं देवी देवता के रूप में, तो वो आत्मा जब इस संसार में आती है तो कोई न कोई देवी या देवता का स्वरूप धारण करती है। प्योर आत्मा, एकदम शुद्ध आत्मा, सतो प्रधान आत्मा, तो देवी देवता के रूप में जन्म लेती है। जहां 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्रेष्ठ थे, जहां उनके कर्म अकर्म थे, पूरी आयुष्य भोग करके शरीर छोड़ते थे स्व इच्छा से, जहां मनुष्य जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की असत्यता न हो, वह आत्मा इतनी सोने जैसी, सतो प्रधान, सतो गुणी, और इसीलिए उनकी आयुष्य लंबी और जन्म कम थे। आयुष्य लगभग 150 साल की आसपास हो, काल चक्र 5000 साल का, चारों भाग एक समान है, तो एक युग कितने का होगा? 1250 साल का युग। और उसमें 150 साल की अगर आयुष्य हो तो जन्म कितने होने चाहिए? 8 जन्म होते हैं, 8 जन्म होते हैं। सतयुग के अंदर हर आत्मा के 8 जन्म है। इसीलिए श्री कृष्ण का जन्म जब मनाते हैं भारत में, जन्म अष्टमी, अष्टमी क्यों कहा? 8ों जन्म की जयंती हम मनाते हैं, एक जन्म की नहीं, उसके 8ों जन्म इतने अच्छे थे कि 8ों जन्म की जयंती मनाने योग्य, इसीलिए जन्म अष्टमी मनाते हैं, 8ों जन्म की जयंती। जहां अकाले मृत्यु कभी नहीं थी, पूरी आयुष्य भोग करके मृत्यु भी उनके लिए एक महोत्सव था, जैसे आज की दुनिया में बर्थडे मनाते हैं, जन्म का एक महोत्सव होता है, ठीक इसी तरह सतयुग के अंदर जब देवी देवताओं ने पूरी आयुष्य भोग ली, सारे परिवार को इकट्ठा करते हैं, सबके आगे अपनी इच्छा रखते हैं कि मैंने अब 150 साल जी लिया, अब मैं एक नया चोला धारण करने जा रहा हूं। कहां धारण करना है वो भी स्पष्ट कर देता है, और उसके बाद बाजे गाजे के साथ उनको विदाई देते। तो जहां मृत्यु भी एक महोत्सव बन जाता है, मृत्यु शब्द नहीं होता है, और इसीलिए देवताओं को कहा जाता वो अमर थे। मृत्यु का भय जिसको सताता नहीं था, आज के इंसान को मृत्यु का भय होता है, लेकिन स्वर्ग के अंदर ये देवी देवताओं को मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि उनके कर्म बहुत अच्छे थे और उनको मालूम था कि कहां जाना है, उनको कौन सा चोला धारण करना है, ये भी जब स्पष्ट था तो सारे परिवार को इकट्ठा करके बड़े उत्साह के साथ उनको विदाई देते थे, बधाई देते थे आगे जन्म के लिए। ये स्वर्ग का समय इसीलिए गाया जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आया जिसको कहा त्रेता युग, चंद्रवंश। 8 जन्म भोगने के बाद जब त्रेता युग में आए, थोड़ी कला कम हुई, थोड़ी त्रुटि आई, 16 कला से 14 कलाधारी बने, और जैसे ही 14 कलाधारी बने था वो भी स्वर्गीय समय ही, लेकिन सत्युग जितनी परफेक्शन वाला युग नहीं था। 2 कला कम हो गई तो थोड़ी आयुष्य कम हुई, जन्म बढ़े, और इस युग में श्री राम और श्री सीता का राज्य था। 14 कलाधारी संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम है, आयुष्य लगभग 125 साल के, 100 से 125 साल के आसपास, और इसलिए जन्म बढ़ गए, 8 से 12 जन्म हो गए। तो त्रेता युग में 12 जन्म होते, सत्ययुग में 8 जन्म होते। इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी 8वें जन्म की जयंती मनाने के बाद 9वें नंबर पर श्री राम आते हैं, इसलिए राम नवमी मनाते हैं। कहा ना मैंने सुबह भी, भक्ति मार्ग में एक एक बात के पीछे इतनी सुंदर रहस्य समाये हुए हैं, जिसको अगर हम समझने लगे कि शब्द के पीछे का भाव भी बहुत सुंदर है। तो 9वें नंबर पर श्री राम आए, इसलिए राम नवमी मनाई गई। मर्यादा पुरुषोत्तम वो भी है, उनके राज्य में भी प्रजा सुखी थी, बहुत सुखी थी, और धीरे धीरे ये समय भी बीतता गया, और सृष्टि नाटक का एक महान परिवर्तन आता है कि वो स्वर्ग का समय समाप्त होता है और द्वापर युग में आते हैं। तो जहां कला कम हो गई, आधा समय 2500 साल पूरे हो गए, 5000 साल में से आधी कला हो गई, 16 कला से 14 कला, 14 कला से 8 कलाधारी हो गए, और जब 8 कलाधारी बन जाते हैं तो जन्म बढ़ जाते हैं, आयुष्य कम हो जाती, अकाले मृत्यु यहां शुरू होती है। भक्ति मार्ग आरंभ होता है, जो देवी देवताएं होकर के गए उनके मंदिर बनाकर हम पूजा करने लगे। इसी युग में सन्यास धर्म आरंभ होता है, अव्यभिचारी भक्ति इन देवी देवताओं की शुरू होती है, और मनुष्य आत्मा दिन प्रतिदिन दान पुण्य करता है, और दान पुण्य करके अपने जीवन को और आगे बढ़ाता है। इस युग में दान पुण्य का बहुत महत्व दिखाया गया है, राजाएं भी दान करते थे, प्रजा भी दान करती थी, कितनी भी गरीब प्रजा क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई किसान भी क्यों नहीं होता है, लेकिन उसके पास भी कोई अतिथि आता था तो बांट के खाता था, ये भाव था भारत में ही। और इसीलिए जब अकाले मृत्यु शुरू हुई, पुण्य कर्म मनुष्य करने लगे, ईश्वर के पैगंबर इस संसार में आए, ये द्वापर युग रहा, फिर भी बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे इसलिए इस युग में 21 जन्म होते हैं। 8 और 12 20 और 21 41। और जैसे चौथा युग आया जिसको कहा कलह क्लेश वाला युग, और इतना कलह क्लेश तनाव एंजाइटी जब बढ़ जाती है मनुष्य जीवन में तो आयुष्य और कम होती जाती है, अकाले मृत्यु इतनी अधिक हो जाती है, मनुष्य आत्मा में एक दो कलह रह जाती है। इसीलिए दुनिया में लोग कहते हैं 99 अवगुण होंगे लेकिन एक दो गुण तो होगा, उसको देखो आप, एक दो वैल्यूज तो होंगे। बस ये एक दो वैल्यूज, एक दो कला जीवन के अंदर रह जाती है। और अकाले मृत्यु होने कारण इस युग में 42 जन्म होते हैं। अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट इंसान बनता जाता है। अहंकार चरम सीमा में पांचों विकार भरपूर जीवन में आ जाते हैं तो आयुष्य और कम हो जाती है। अकाले मृत्यु इस तरह से होती है, एक जन्म में 2 साल में शरीर छोड़ देता, दूसरे जन्म में 42 साल में जन्म शरीर छोड़ता है, तो कोई 80 साल 90 साल 100 साल तक भी जी लेता है। और मृत्यु का भय उसको सताने लगा, ये इस युग की कहानी है। ऐसे अगर देखा जाए 8 और 12 20 और 21 41 और 42 जन्म कलयुग के मिलकर के 83 जन्म हुआ। 84वां जन्म कहाँ होता है, जिस जन्म को कहा जाता है दुर्लभ जन्म, बार बार नहीं मिलता है, और वो एक जन्म इतना वैल्यूएबल है कि 2 युगों के संधि काल में होता है, जब कलयुग पूरा होना होता है, सत्ययुग आने वाला होता है, उस बीच के जो संधि काल का समय होता है उसमें एक जन्म। और ये जन्म महत्वपूर्ण है, दुर्लभ जन्म है, क्योंकि इसी जन्म में हमें 84 जन्मों का ज्ञान प्राप्त होता है, कर्मों का ज्ञान प्राप्त होता है, समय के चक्र का ज्ञान प्राप्त होता है, यही जन्म में मिलता है। और इसीलिए ये जन्म को अगर वेस्ट कर दिया जाए तो ये जन्म बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि ये समय ही बहुत छोटा होता है। इस अंधिकाल के समय में सिर्फ एक जन्म, और अगर ये जन्म नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव एटीट्यूड्स में, नेगेटिव कर्म में वेस्ट कर दिया गया तो उसके बाद कहाँ जन्म मिलेगा। इसलिए कहा जाता है फिर तो नरक में ही जन्म लेता। नरक कहाँ है, यही स्वर्ग भी है, सत्ययुग और त्रेता युग। स्वर्गीय समय है द्वापर और कलयुग, द्वापर भी नहीं कलयुग अधिक नरकीय समय है, जहां मनुष्य जीवन में भोगना अधिक हो जाती है। तो इसीलिए ये जन्म बार बार नहीं मिलता है। इसीलिए आज दुनिया भर में जागृति है वैल्यूज की। वैल्यूज की जागृति क्यों आ गई है, आज हर कोई वैल्यूज की बात करता है। आज चाहे कहीं ऐसे लीडर्स हो गए अन्ना हजारे जैसे लोग, जो दुनिया के अंदर पुनः ये समय की पुकार है, वो अपने आप नहीं कर रहे, समय उनसे करवा रहा है कि एक बेहतर विश्व चाहिए, एक बेहतर विश्व, अच्छा सुंदर विश्व चाहिए, ये समय करवा रहा है। आज दिन तक नहीं किया, अपनी यंग लाइफ में नहीं किया, अभी क्यों किया, ये समय करवा रहा है। ईश्वर ने जो समय रखा है, इस समय के अंदर ये जागृति आई और ये जागृति करवा रही है। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं सुधरेंगे तो समय की पछाड़े तो खानी पड़ेगी, फिर कोई नहीं बचा सकता है। इसीलिए आज अगर धार्मिक लोग जाकर के कहे तो शायद लोग कहेंगे भाई आपके लिए कहना बहुत सहज है, आप संसार में तो है नहीं, आपके लिए कहना बहुत सहज है। रामदेव के लिए क्या हुआ, और अन्ना हजारे जैसे लोग अगर कहे तो उसका प्रभाव समाज के ऊपर अधिक पड़ता है। इसलिए समय ने ऐसे आत्माओं को चुना है, ये समय ने चुना है। समय बड़ा बलवान है और इसीलिए उनके अंदर ये प्रेरणा स्फुरित हुई है और सही अर्थ में ईश्वर की प्रेरणा को कैच करके अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो निमित्त बन गए एक बेहतर विश्व लाने के लिए। और कई लोग जो ये चाहना रखते हैं उनके साथ जुड़ने लगे, ये समय करवा रहा है। वैल्यूज की जागृति, एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने की जागृति, पॉजिटिव थिंकिंग की जागृति, ये समय करवा रहा है। ये समय हरेक के अंदर स्फुरित करता है क्योंकि आज जितना हम कहते हैं लोग कहेंगे अरे भाई आपके लिए बहुत सहज है, ये हमारे हम गृहस्थी लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन जब ऐसे लोग कहते हैं तो जुड़ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। प्रैक्टिकल है, अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जन्म अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ। इस युग का नाम भी है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। पुरुषोत्तम जहां नर से सो नारायण, इसीलिए गीता में कहा है नर ऐसी करणी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करणी करे जो श्री लक्ष्मी बने। माना मनुष्य अपने करनी से ही श्री लक्ष्मी नारायण बने हैं, साधारण नर नारी से ही लक्ष्मी नारायण बने हैं। माना उस वैल्यू सिस्टम को अगर हम भी ले आए तो हम भी, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में ये बहुत अच्छी बात लिखी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य से देवता बनाना कोई बड़ी बात नहीं है ईश्वर के लिए। समय बहुत बड़ा मददगार बनता है और ये जागृति क्रिएट करने में। और इसी तरह मनुष्य से देवता बन गए, नर से सो नारायण, नारी से सो श्री लक्ष्मी बन गए। लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? कर्म। नर ऐसी करनी करे, कर्म महत्वपूर्ण। कल्याण करने वाला ये संगम युग है जहां हर आत्मा का कल्याण होता है। संगम युग जहां आत्मा का परमात्मा से संगम होता है, जहां दो युगों का संगम होता है, कलयुग और सतयुग का संगम होता है, ये वो समय है। इसलिए कहा ये समय बार बार नहीं आता है। कितने प्रकार के कर्म हैं? इस युग में जो कर्म करता है वो श्रेष्ठ देवी देवता बन जाता है, मनुष्य से देवता सहज बन सकता है। तो कितने प्रकार के कर्म हमने देखे? चार प्रकार के कर्म। सतयुग के अंदर जो कर्म है वो जिसको हम कहते अकर्म, सतयुग और त्रेता युग में मनुष्य जो कर्म करते हैं उसको कहा जाता अकर्म। द्वापर युग में जो कर्म करते हैं उसको कहते हैं पुण्य कर्म। कलयुग के अंदर जो कर्म करते हैं उसको कहते हैं अधिकतर पाप कर्म। और ये संगम युग, एक जन्म में हम जो कर्म करते हैं उसको कहते हैं श्रेष्ठ कर्म। अकर्म माना देवी देवता ने अकर्म किया, माना कर्म ही नहीं किया। नहीं, कर्म तो करते ही है, लेकिन अकर्म किसको कहा जाता है? तो एक में सुंदर एग्जाम्पल जो मुझे स्मृति में आता है कि आज अगर मानो मैं बीज बोऊं, धरती के अंदर बीज बोया, मैंने ये कर्म किया, उस बीज से एक पौधा निकला, उस पौधे को भी मैं सींचती गई, मैंने ही सींचा, उस पौधे से वृक्ष बना और उस वृक्ष के ऊपर फल लगे, जब फल लगे मैंने तोड़ के खाया, बीज बोने का कर्म भी मैंने किया, फल तोड़ के खाने का कर्म भी मैंने किया, दोनों कर्म में कोई अंतर है या नहीं है? क्या कहेंगे? बीज बोना भी कर्म है, फल तोड़ के खाना भी कर्म है, दोनों कर्म मेरे द्वारा ही किए गए, दोनों कर्म में कोई अंतर है कि नहीं है? है? बीज बोने का कर्म जो है वो श्रेष्ठ कर्म है, और फल खाने का जो कर्म है उसको कहते अकर्म। कैसे? ये संगम युग में जो हम ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से जो कर्म करते हैं, ये बीज बोने का कर्म है। और इस बीज के फल स्वरूप जो सत्ययुग और त्रेता युग में जन्म मिला और वहां जो कर्म किया वो फल खाने का कर्म है। जो कर्म का फल खा लिया, फल खाने के कर्म के बाद उसका कोई और फल नहीं मिलता, सेटिस्फेक्शन एंड दैट इट इज फिनिश्ड। फल खा लिया, सेटिस्फेक्शन मिला, फिनिश, उसका कोई दूसरा फल नहीं मिलता है, अनलेस मैं उस बीज को पुनः धरती में बो। अगर खा करके बीज फेंक दिया तो वो कर्म अकर्म हो गया। ठीक इसी तरह सतयुग के अंदर, सतयुग और त्रेता युग के अंदर वो फल खाने वाला कर्म है। इस एक जन्म में हमने इतना जमा किया जो दो युग तक चला, इतने फल मिलते गए। जैसे एक बीज बो, हर सीजन में फल मिलता है और एक दो फल नहीं लगता है, 100-200 फल निकल आते एक वृक्ष से, तो हर जन्म में उसका फल भोगते हैं। इतने पावरफुल कर्म ये संगम युग पर हम करते हैं, इसीलिए यह जन्म दुर्लभ है, श्रेष्ठ कर्म जिसका फल 20 जन्म तक खाते हैं। सत्ययुग और त्रेता युग तक हर जन्म में उसके फल मिलते हैं, इतना पावरफुल कर्म, उसमें इतनी पोटेंशियल होती है। एक बीज में इतनी पोटेंशियल, हर साल कितने फल देता है, इसीलिए उसको अकर्म कहा जाता कि वहां ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका कोई और फल मिले, इसलिए वो अकर्म हो जाता है, तो न्यूट्रलाइज होता जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति बैंक बैलेंस जमा करता है, अगर उसको पूछो भाई बैंक बैलेंस क्यों जमा करते हैं, तो क्या कहते हैं, भाई रिटायरमेंट होगी तो काम आएगा मुझे ही, उसके बाद कमाने थोड़ी जाएंगे, और इसीलिए बैंक बैलेंस जमा करता है। अब रिटायरमेंट आ गई, रिटायर लाइफ जीने लगा, जो जमा किया हुआ है वो खाना शुरू करें, उठा उठा करके इतना जमा किया है उसने, जो खुले दिल से वो खर्च करता है रिटायरमेंट में भी, इतना उसको मिल रहा है, अब उसमें एडिशन जमा नहीं हो रहा है, लेकिन उसके पास इतना है कि वो सोचता है बाद में किसके लिए छोड़ के जानेगा, खाओ अच्छी तरह से खाओ, खुले दिल से खर्च करता है। लेकिन धीरे 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 वो खर्च करते करते बैंक बैलेंस तो कम होगा, और जब बैंक बैलेंस कम हो जाता है, एकदम कम रह जाता है, और अभी भी उसका स्वास्थ्य के हिसाब से उसको लगता है कि भाई मैं 10 साल और जीऊंगा, अभी इतना जल्दी मरने वाला तो नहीं हूं, लेकिन बैलेंस बहुत कम हो गया है, तो क्या करेगा, छोटा मोटा कोई काम करेगा, कंजूसी से जिएगा, और थोड़ा बहुत जमा भी होता जाएगा उसको बड़ी करकसर के साथ खर्च करने लगता है, और बाकी के साल भी पूरे करते जाता है। बैंक बैलेंस एकदम अगर खत्म हो गया और अभी भी उसका साल, 2 साल या 5 साल बाकी हो, तो क्या करेगा, थोड़ा उधारी खाता शुरू करता है, बच्चों से कुछ उधारी लेगा, कुछ लेगा, उधारी खाता शुरू होता है, और उसको दे भी देते हैं, चलो खुले दिल से खर्च किया, सबको समय पर मदद किया, उसको दे दो, अभी उसके आवश्यकता है, 2 साल 5 साल का है ये मेहमान, लग करके लोग उसको देते भी है, कुछ रिश्तेदार उसको मदद करते भी है। ठीक इसी तरह ये संगम युग में जो हम कर्म करते हैं ना, बैंक बैलेंस जमा करने का कर्म करते हैं, सत्ययुग और त्रेता युग में खुले दिल से वो बैलेंस खाना शुरू करते हैं। जब त्रेता अंत होता है तब देखा जाता बैंक बैलेंस तो बहुत कम रह गया और अभी तो दो युग बाकी है, अब इतने बैंक बैलेंस में से कैसे चलाएंगे। तो द्वापर युग में हमने क्या किया, दान पुण्य किया, दान करके पुण्य कमाना, बैलेंस थोड़ा बढ़ाते गए चलाते गए। तो दूसरा कर्म द्वापर युग में जो हुआ पुण्य कर्म, ऐसे करके द्वापर युग भी पूरा कर दिया। लेकिन जब कलयुग आया बैंक बैलेंस एकदम खत्म हो गया, अभी उधारी खाता शुरू होता है पाप कर्म। जाने अनजाने पन में भी बहुत पाप कर्म करने लगे। अब ये उधारी तो सेटल करना ही पड़ेगा, है ना, तो इसीलिए सेटलमेंट भी करते हैं और उधारी खाता भी चलता है। जाने अनजाने पन में पाप कर्म बहुत होते कलयुग के अंदर। अब ये तो मालूम है कि भाई मैंने किसको दुख दिया, किसी को मारा, थप्पड़ मारा, कुछ बुरे शब्द कहे, ये तो पाप कर्म के खाते में गए। लेकिन अनजानेपन के पाप कर्म कौन से हैं? मानो एक भिखारी बैठा है मंदिर के बाहर और उसकी स्थिति को देख करके मुझे दया आई और मैंने 10 रुपया दान किया, सोचा ये तो मेरा पुण्य का खाते में जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स के वो उस 10 रुपए का इस्तेमाल कैसे करता है। मानो उस 10 रुपए से उसने एक चाकू खरीदा और किसी का खून किया, उसने जो कर्म किया मैंने दिया तब किया, तो उसके कर्मों में भागीदारी, यह है अनजानेपन के पाप कर्म में भागीदारी में शुरू हो जाती है, है ना। अब भागीदारी चुकतू करने का समय आएगा तो भी साथ में ही चुकतू करना पड़ेगा, भागीदारी में कर्म हुआ है। अब जाने अनजानेपन में भागीदारी हो गई तो चुकतू करने का समय आता है, तो कैसे चुकतू होता है कि मानो ट्रेन में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं। अब जब हम ट्रेन में चढ़ते हैं, ट्रेन बहुत पैक है, किसी भाई ने देखा हम खड़े हैं तो कहा आओ भाई बैठो यहां बाजू में बैठो, उसने खेसक करके थोड़ी जगह करके दे दिया, हमको लगा कितना अच्छा भाई है। लेकिन उसने ही क्यों किया, कहीं ना कहीं कोई भागीदारी है ना। अब उसने जो पाप कर्म किए हैं, वो कहीं से भाग रहा था, कुछ लोग उसके पीछे पड़े थे और दूसरे स्टेशन में वो लोग चढ़े और उसको ढूंढते हुए वहां आ गए और गाली गलौज शुरू हो गई और उसको ऐसी बुरी उल्टी सीधी बातें कहने लगे और हम देखते रहे ये व्यक्ति इतना अच्छा, उसने मेरे को तो बैठने की जगह दिया और ये लोग उसके पीछे इतना क्यों कर रहे हैं, क्यों उसको मारने पीटना शुरू कर दिया, मार पीट शुरू कर देते हैं। अब जिसको जगह मिली है, भागीदारी तो उसके साथ है, वो बीच में बोलने जाता भाई क्यों मारते, वो व्यक्ति तो अच्छा है। अब बोलने जाते हैं वो लोगों को लगता ये उसके साथी है, उसके साथ हमें भी पीट देते हैं। अब हम कहते भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें क्यों पीटा गया, क्यों पीटा गया, भागीदारी थी ना। तो भागीदारी में जब आता है तो सेटलमेंट भी भागीदारी में ही होता है। इसलिए कहते कर्म की गति अति गुह्य है। अब जितनों के साथ भागीदारी होगी ना, उतनों के साथ इकट्ठे होकर के चुकतू करना पड़ता है। अब मान लो जैसे कहावत है कि भाई आज एक कसाई है, कसाई जानवर को मारता है, उसने तो पाप कर्म किया, वो दुकान वाले को बेचता है, वो भागीदार हो गया। अब दुकान वाले से जिसने रिटेल में खरीदा वो भागीदारी में जुड़ गए और उस रिटेल वाले से जिसने खरीदा वो भागीदारी में जुड़ गए, वो मांस को लेकर घर में गए, घर में पकाने वाला भागीदारी में जुड़ गया, पकाने के बाद उसके घर में पार्टी थी, पार्टी में 50 लोग आए थे, सबने मिलकर के खाया, वो सब भागीदारी में जुड़ते गए। अब जब चुकतू करने का समय आता है ना, इकट्ठा चुकतू करना पड़ता है। कैसे चुकतू होता है? मानो कहीं बस में जा रहे हैं हिल स्टेशन पर घूमने के लिए, जो उस भागीदारी में नहीं होंगे ना अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, जो भागीदारी वाले हैं वो सब उसमें चढ़ गए। अब चढ़ गए, अब वही जानवर दूसरे जन्म में, भाई वहां तो मर गया, दूसरे जन्म में वो जोर से रास्ते के बीच में आता है, वो ड्राइवर जो कसाई था वो उसको बचाने का प्रयत्न करता है, और बचाने के प्रयास में खाई में गिरती है। अब जिस जिसने जो जो हिस्सा खाया था उसको वहीं चोट लगेगी। अब लोग कहते ड्राइवर की गलती थी, हमने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन ये सारा भागीदारी का हिसाब था। जो चुकतू करने का समय आया, भाई आपने अगर कुछ नहीं किया होता था तो अगले स्टेशन पर उतर जाते थे, अगर बैठे रहे तो माना कहीं न कहीं उस भागीदारी में आपका हिस्सा भी है, इसीलिए वहीं जाकर के चोट लगेगी। इसलिए कहा कर्म की गति अति गुह्य है, जितने उसमें भागीदार बने, अगर बड़ा बड़ा मामला है 400-500 उस भागीदारी में, तो फ्लाइट में जाते हैं 400-500, 100-200। जो भागीदारी में नहीं होंगे ना उसकी फ्लाइट मिस हो जाएगी, जो भागीदारी में है उसी फ्लाइट में चढ़ेंगे। बीच में सुना था कि बैंगलोर से एक फ्लाइट चली और टेक्निकल कुछ फॉल्ट आया और उसके कारण उसमें आग लग गई, और एक छोटा बच्चा छह मास का जो बच्चा था उस ऊपर से गिरा, और खेत में वो घास का जो ये रहता है ना उस पर आके गिरा, उसको एक खरोच तक नहीं लगी, वो उस भागीदारी में नहीं था, बच गया। जाके राखो साई मार सके ना कोई, इसलिए कहा कि जो उस भागीदारी में नहीं है उसको एक खरोच तक नहीं आती है, लेकिन जो उस भागीदारी में होते हैं उसको हर एक को किसी न किसी रूप में चोट जरूर आती है। ये है कर्म की गुह्य गति। इसलिए अगर कोई कहे कि भाई पैसेंजर सारे इनोसेंट थे, ड्राइवर की गलती थी, इनोसेंट एक भी नहीं था, इनोसेंट एक भी नहीं था, ये हमारी सोच है जो हम समझते ये इनोसेंट थे, इनोसेंट एक भी नहीं था, ये कर्म की गुह्य गति बताती। इसलिए कहा जाने अनजाने पन में भी पाप कर्म बहुत हुए, और उस पाप कर्म की भागीदारी में जितने भी कर्म थे वो भी चुकतू तो करना पड़ता है। संगम युग में ये एक जन्म में जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं उस श्रेष्ठ कर्म का आधार क्या है? तो जैसे ही किसान बीज बोता है ना, तो बीज के लिए सबसे पहले धरनी को देखता है कि धरनी कैसी है। तो चरित्रवान जीवन रूपी धरनी हो, अच्छा फल पाना है सत्ययुग और त्रेतायुग, 20 जन्म खाना हो जिसके फल, तो वो कर्म कैसे होने चाहिए, श्रेष्ठ कर्म का आधार क्या? तो चरित्रवान जीवन रूपी धरनी, उसके बाद अच्छे कर्म का बीज हो, बीज इतना पोटेंशियल वाला हो, शुद्ध भावना वाला हो, बहुत पावरफुल विचारों से, इंटेंसिटी से किया गया हो अच्छे कर्म, ये बीज का कार्य करता है। जैसे किसान बीज की क्वालिटी को भी देखता है, तो धरनी की क्वालिटी को भी देखता है, तो वातावरण को भी देखता है, और इसीलिए नियम और संयम रूपी खाद उसमें डालता है। चरित्रवान जीवन रूपी धरती हो, उसमें संयम नियम एक खाद का काम करता है, और फिर अच्छे वातावरण माहौल वायु का काम करता है। जिस परिसर में हम बड़े होते हैं, जिस तरह का एनवायरमेंट होता है, ये वायु का काम करता है। जहां व्यक्ति बड़ा होता है, घर का वायु कैसा है, घर का माहौल कैसा है, घर के संस्कार कैसे हैं, ये वायु का काम करता है बच्चों के अंदर। उसके बाद धूप कौन सी है, तो ज्ञान सूर्य परमात्मा से योग लगा करके उससे जो शक्ति प्राप्त करते, ये धूप का कार्य करता है, ज्ञान सूर्य है। उसके बाद सींचना कैसे है, तो क्वालिटी ऑफ वाटर कैसी होनी चाहिए, तो ज्ञान अमृत से उसको सींचना है। नित्य हर रोज अच्छे विचारों से उसको सींचना है। कई लोग हमें पूछते हैं, रोज सेंटर पर जाने की क्या जरूरत है, घर में हम नहीं कर सकते क्या, क्यों सेंटर पर जाना चाहिए? आज एक बच्चे को हम घर में ABCD सिखा सकते हैं ना, स्कूल क्यों भेजते हैं? घर में ABCD तो सिखाना है, सिखा सकते हैं ना, फिर स्कूल क्यों भेजते हैं? घर में सिखाने बैठेंगे, बेल बजा, फोन बजा, कोई मिलने आया, कभी व्यवस्थित रीति से उसको सिखा नहीं पाएंगे और वो आपकी सुनेगा भी नहीं फिर। लेकिन जब स्कूल जाता है तो एक माहौल मिलता है, एक वातावरण मिलता है, वैसे साधन मिलते हैं, संग मिलते, तो उसकी सीखने की प्रक्रिया अच्छी हो जाती है। घर में मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन घर में वो माहौल ही नहीं हो तो मेडिटेशन होगा भी नहीं। इसलिए अगर स्कूल में जाते हैं, इसीलिए इस सेंटर्स का नाम लिखा है ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, विद्यालय है जहां अंधश्रद्धा नहीं है, जहां पढ़ाई है, हर बात को अच्छी तरह समझ के करना होता है। तो इसीलिए ये जल, ज्ञान अमृत का जल उसको जरूरी है सींचने के लिए। उसके बाद उसको चिड़ियाओं से बचाना है, फल लगता है ना, तो चिड़ियाएं आ जाते हैं उस फल को खराब करने के लिए। अगर फल खराब हो गया तो भी वो कोई काम का नहीं, फेंकना ही पड़ता है, इसी तरह खा नहीं सकते उस फल को। ठीक इसी तरह चिड़िया कौन सी है, घमंड। कई बार कई लोगों को अच्छे कर्म का भी घमंड आ जाता है, ये चिड़िया ने फल को झूठा कर दिया, संग का रंग लग गया, बुरी संगत में फंस गए, पता भी नहीं चला कि बुरी संगत में कैसे आए, तो ये संग का रंग जो लगा